समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो वैष्णवी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Vaishnavi. And for you, we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, देश की समृद्धि और विकास के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण।
फर्स्ट एवर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव बीइंग सेट अप इन मोरक्को।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का पहला खंड 2027 तक शुरू होगा।
ईरान सेज इट वुड नॉट एक्सेप्ट एनी अनफेयर प्रेशर ओवर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, वन सच मूव्स कुड एस्केलेट टेंशन।
और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about mobiles, catalyst of India's digital rise, and International Red Panda Day. Well, to start off with the first topic, on 31st July 1995, India heard its first ever mobile ring, a sound that marked the dawn of a digital era. The historic call connected the then Union Minister of Communications, Sri Sukram in Delhi, with West Bengal Chief Minister Sri Jyoti Bosu in Kolkata. What seemed like just a simple conversation was in fact the beginning of a communication revolution that would transform how 1.4 billion Indians connect, work and dream today. From receiving calls to participating in social media, entertainment to studies, banking to a host of other activities made possible by super cheap data, India has seen a telecom revolution. With 85.5% of Indian households having at least one smartphone, mobile phones have become India's bank, classroom and television. In rural regions, farmers are leveraging mobile-based tools such as the Digital Crop Survey to conduct ground surveys while also accessing vital information and services through platforms like the M-Kisan portal and the National Pest Surveillance System, NPSS app, including market prices, weather updates, advisories and pest alerts.
व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 29 आयु वर्ग के लगभग 96.8% ग्रामीण निवासियों ने जनवरी से मार्च 2025 के दौरान कॉल या इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा 97.6% था। एक दशक पहले की बात करें तो भारत मोबाइल बाजार आयात पर बहुत अधिक निर्भर था, लेकिन अब भारत ने समग्र इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश है। 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थी, लेकिन आज तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में अब 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं, जो ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।
The electronic sector, a vital pillar of the digital economy, is witnessing rapid transformation driven by iconic initiatives such as Make in India. The country is building a strong domestic electronics base, attracting major investments and boosting local production. Exports have surged, even outpacing traditional sectors like textiles, while government support and expanding manufacturing capacity are positioning India as a global hub.
आज के समय की बात करें तो स्मार्टफोन व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बना रहे हैं, सूचना और सेवाओं की पहुंच को आसान बना रहे हैं और एक अधिक डिजिटल रूप से जुड़े और समावेशी समाज को बढ़ावा दे रहे हैं। यही उदाहरण के लिए बात करें तो भारत के मोबाइल फोन निर्माण क्षेत्र ने पिछले एक दशक में 12 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं और भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को भी मजबूत किया है।
Yes, and India's smartphone market is evolving rapidly with consumer preferences increasingly leaning towards 5G adoption and premium features. And according to the market research, 5G smartphone shipments surged to 82% of the total shipments last year, reflecting a remarkable 49% year-over-year growth. And as per Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav, India's journey in electronics manufacturing has evolved through distinct phases, beginning with finished goods, progressing to sub-assemblies, and now entering the critical phase of deep component manufacturing. The sector is steadily advancing into this third phase, which marks a significant leap in value addition, self-reliance, and ecosystem depth.
भारत अब मोबाइल फोन निर्माता के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ये अभूतपूर्व उपलब्धि न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत की तीव्र प्रगति को रेखांकित करती है, बल्कि उत्पादन और निर्यात दोनों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में इसके उभरने का भी उदाहरण है।
Yes, and in India, mobile phone manufacturing and exports have seen phenomenal growth, redefining the country's position on the global stage. And central drivers of this progress are government policies, a young demographic, a growing middle class, and rising per capita incomes. With numerous schemes to support mobile manufacturing processes in India, the country has significantly boosted local manufacturing, exports, and investment. And as India moves towards a $300 billion electronics production target by 2026, its robust policies and skilled workforce are paving the way for sustained growth, positioning the nation as a key player in the global mobile and smartphone segment. And now we move on to our second topic in a Dateline section. And today is the International Red Panda Day. Red pandas are native to the eastern Himalayas and southwestern China, are an endangered species that are legally protected in countries like India, Nepal, Bhutan and China. And to raise awareness regarding the conservation of these beautiful animals, every third Saturday of September is celebrated as International Red Panda Day. And launched in 2010 by the Red Panda Network, RPN, the day highlights threats like habitat loss, poaching and climate change, and encourages action through education, fundraising and supporting local conservation initiatives. And red pandas were discovered roughly 50 years before the giant pandas. And in the last 20 odd years, the global population of the red panda has declined by roughly 50%. And according to some reports, there may be as few as 2,500 pandas left in the entire world. And the estimation is scary enough and highlights the need to conserve the species.
श्रोताओं, अब आपको लाल पांडा के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। लाल पांडा ज्यादातर वनस्पतियों पर जीवित रहते हैं और बहुत कम मांस खाते हैं। और क्या आपको मालूम है कि 98% लाल पांडा बांस खाते हैं और उनका पसंदीदा भोजन भी बांस ही है। जहां पांडा को लोग आलसी मानते हैं, वहीं लाल पांडा बहुत फुर्तीले होते हैं। वे पेड़ों पर चढ़ने में कुशल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस का उद्देश्य इन जानवरों की कम होती आबादी और उनके आवास और उसके बाद उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। वनों की कटाई, विखंडन और संरक्षण उनकी आबादी में गिरावट के कुछ कारण है।
National award-winning film Chalo Jeete Hai has been screened nationwide across lakhs of schools and nearly 500 cinema halls to mark the 75th birthday of Prime Minister Narendra Modi, and it is inspired by a childhood incident from the life of Prime Minister Modi. The film tells the story of a young boy, Naru, who is deeply influenced by Swami Vivekananda's philosophy and strives to make a difference in his small world. Meanwhile, the School Education and Literacy Department of Ministry of Education has directed all schools in the country to screen the film, and our correspondents across the country have sent people's reaction about the film. First, let us go to Mumbai, where PVR icon Infinity Varsova has already screened the film on Thursday, and nearly 284 tickets were sold out for a single show, and the public expressed that they are totally inspired by this film and it has made a lasting impact on their minds. And Gautam Datta, CEO, PVR Inox, in an exclusive video message, has urged people to come in large numbers to see this film.
Wishing our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi a very happy 75th birthday. And on this occasion, I'm so proud and happy to announce a film dedicated to his life, his work, his compassion, and most importantly, his resilience. This is something that we all need to learn from. This is something that we all need to get inspired from. And this inspiring story is playing out at PVR INOX cinemas across the country. We really urge you guys to all come in numbers to come and see this inspiring story. Already, we've had so many people come and enjoy the story and feel so elated. I've never seen such a response from the audience. They are inspired when they're moving out. The name of this inspiring film is Chalo Jeete Hain. This is really the motto of our Prime Minister. Come live with me and live in a manner that the whole world watches you. And hence, this is so important that every adult, every child in this country should be exposed to this beautiful story, a story that will leave you inspired for a lifetime. So you're welcome to our cinemas to come and enjoy this film.
चलिए भोपाल की ओर रुख करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं को कल से मध्य प्रदेश के सिनेमाघरों में पुनः प्रदर्शित किया जा गया. प्रधानमंत्री श्री मोदी के बचपन पर आधारित इस फिल्म को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी देखा.
कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल पर आधारित शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन देखा. उन्होंने फिल्म की मुक्त कंठ से सराहना की. मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि वे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म अल्प अवधि में प्रधानमंत्री श्री मोदी के बचपन और संघर्ष को प्रभाव ढंग से प्रस्तुत करती है.
पिक्चर के माध्यम से कठिनाइयों के बावजूद भी हमको अपने मार्ग पे, जनता की सेवा के मार्ग पे, सुशासन के मार्ग पे, व्यवस्थाओं को सुधारने और संवेदनशील बनाने के लिए जितने अच्छे ढंग से फिल्म बनी है, मैं बधाई देना चाहूँगा.
यह फिल्म इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, बालाघाट और जबलपुर में कल से ही दिखाई जा रही है. परिक्रमा के लिए विपिन मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल.
और अब पटना की ओर चलते हैं. तो फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन पटना के सिनेमाघरों में भी किया जा रहा है. आम लोगों के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी फिल्म देखने पहुंच रहे हैं. लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में फिल्म को काफी प्रेरणादायक बताया है. आज दोपहर इस पटना के P&ML मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी में इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया. फिल्म को देखने पहुंचे भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि फिल्म काफी प्रेरणादायक है.
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित आज फिल्म का जो है यहाँ पर शो किया गया है.
चलो जीते हैं ये अपने आप में संकल्प शक्ति यादें यहाँ पे दिखाई गई है. यह वास्तव में प्रेरणादायी है.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Dhordo in Kutch, which was renowned as the world's best tourism village and for its annual Run Utsav, has now officially become the fourth solar village of Gujarat. And Prime Minister Narendra Modi today virtually dedicated Dhordo as a solar village at Samudra Se Samriddhi program in Bhavnagar. We have a report from a correspondent.
Dhordo village in Kutch, recognized by the United Nations World Tourism Organization as the best tourism village, has now become fully solar powered. With this milestone, Dhordo joined Modhera in Mehsana, Sukhi in Kheda, Masli in Banaskantha as the fourth solar village of Gujarat. Under PM Suryaghar Muft Bijli Yojana, every residential electricity connection in Dhordo village has been solarized, allowing houses to generate their own power. As part of this initiative, 81 homes have been equipped with solar solar rooftops, adding a capacity of 177 kilowatts. The project is expected to produce 2.95 lakhs units of electricity annually, bringing an estimated benefit of 16,000 per year to each household. Mia Hussain, Sarpanch of Dhodo village, shared that with solar rooftop now installed in every home, electricity bills will be greatly reduced, providing significant relief to the villagers.
PM Surya Ghar Yojana antargat hamara gaon pura solar se pura ban chuka hai aur hamare yahan bhi jo light bill hai wo zero ho jayega. Uske alawa bhi hamare Kachh mein to shayad mera gaon pehla hai aur Gujarat mein bhi chauthe number pe hoga. PM Surya Ghar Yojana antargat jo subsidy hai uska bhi labh logon ko mila.
Beyond reducing electricity bills, villagers will now also earn from the surplus power supply to the grid. Although altogether Dhodo is projected to gain over 13 lakh annually through the combined saving and additional income, setting an example of clean energy driven prosperity. With India rapidly moving ahead with the vision of developed and self-reliant India by 2047, a small village like Dhodo has set a benchmark in sustainable development, strengthening Gujarat's leadership in renewable power and its commitment to greener future. For Parikrama, this is Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
उत्तर प्रदेश इस महीने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय निवेश और साझेदारी का मंच बनेगा। ग्रेटर नोएडा में 26 सितंबर को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान रूस इंडिया बिजनेस डायलॉग का आयोजन किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय निवेश सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस वर्ष रूस पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश और भारत को नए व्यापारिक अवसरों की बड़ी सौगात मिलेगी। ट्रेड शो के दौरान रूस इंडिया बिजनेस डायलॉग का मुख्य उद्देश्य भारत और रूस के बीच व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहित करना है। इस दौरान बैंकिंग एवं निवेश, बीमा, शिक्षा और सामान्य व्यापार जैसे क्षेत्रों पर विशेष चर्चा होगी। इससे दोनों देशों के बीच न केवल आर्थिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि प्रदेश के उद्योग और कारोबारी भी लाभान्वित होंगे। संवाद में तकनीकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और नए निवेश मॉडल पर भी विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और भारत की साझेदारी शिक्षा, बीमा और निवेश क्षेत्रों में नई संभावनाओं को जन्म देगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में चल रही औद्योगिक नीतियों और मेगा प्रोजेक्ट्स में रूस की कंपनियों की भागीदारी से रोजगार और विकास के अवसर और बढ़ेंगे। इस आयोजन से उम्मीद है कि भारत और रूस के बीच आर्थिक रिश्तों को नई गति मिलेगी और उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है कि प्रदेश न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निवेशकों के लिए पहला विकल्प बने। यह बिजनेस डायलॉग उसी दिशा में एक कदम है। परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
Western Odisha is a land where festivals and folk traditions blend into the everyday life of people. Among these, two cultural treasures stand out, Bhai Juntia and Dalkhai dance. We have more from a correspondent.
Bhai Juntia is a festival of love and dedication between sisters and brothers. On this day, women observe a day-long fast and tie the sacred Juntia thread, praying for the long life and prosperity of their brothers. The streets and villages of Sambalpur, Bargarh, Balangir, Subarnapur and Kalahandi come alive with devotion. It is not just a ritual, but an emotional bond where sacrifice, care and affection are expressed through tradition. And when the evening falls, the rhythm of Dalkhai takes over. This famous folk dance of Western Odisha is mostly performed by young women, especially during festivals like Bhai Juntia and Nuakhai. The word Dalkhai itself is an invocation, a call to the divine. Dancers dressed in colorful Sambalpuri saris move gracefully in circles to the beats of dhol, nisan and tasa. Each step, each sway of hand reflects both joy and prayer. The songs that accompany Dalkhai are full of wit, love and social messages. Together, Bhai Juntia and Dalkhai showcase the soul of Western Odisha, where devotion and celebration go hand in hand, where women's voices are not just heard but celebrated, and where culture continues to flow like the river Mahanadi, ever vibrant, ever alive. For Parikrama, Supriti Mishra from Akashvani Sambalpur.
Yes, and in Kerala, discussions on development are closely tied to the ocean. With a coastline spanning around 600 kilometers, the state's culture and economy are deeply connected to the sea and its resources. And that is why the Kerala European Union Blue Economy Conclave, held at Kovalam near Thiruvananthapuram, has captured significant attention. Let's now hear more from a Thiruvananthapuram correspondent about the Blue Economy Conclave and the initiatives aimed at promoting a sustainable ocean economy.
The blue economy refers to the sustainable use and management of ocean resources for economic growth, improved livelihoods, and preservation of ocean ecosystems. The Kerala European Union Blue Economy Conclave, held at Kovalam near Thiruvananthapuram, focused on these very issues. The event saw participation from union ministers, the Kerala Chief Minister, ambassadors from 17 countries, and experts in the field. Key discussions revolved around sustainable ocean investments, climate action, and innovation. The conclave, supported by the union government, highlighted achievements in sustainable aquaculture and coastal resilience in India, which were praised by the delegates. A key appeal of the event was to preserve cultural identity and coastal heritage while progressing in ocean sustainability. Smithy M. Pallurithi, ആകാശവാണി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
In today's episode, we pay tributes to three valiant women freedom fighters who went against the might of British imperialism and laid down their lives for the independence of India.
Remembering the 60-year-old Assamese martyr, Bhogeshwari Fukanani, who laid down a life for the love of motherland on this day in 1942. Born in Bharampur area of Assam's Nogaon district in 1885, Bhogeshwari was a simple housewife but led massive rebellions in her area and encouraged her six sons and two daughters to participate in the freedom movement.
After the Barhampur office of the Indian National Congress was seized by the British authorities, the revolutionaries attacked and took back control of the office in September 1942. However, the authorities sent military forces under Captain Finnish to take revenge and crush the revolutionaries.
Bhogeshwari, along with another freedom fighter, Ratanmala, led the revolutionaries and confronted Captain Finnish. When the captain snatched the flag from Ratanmala's hand, Bhogeshwari was furious by the disrespect towards the national flag.
She snatched the flag from Captain Finnish's hand and hit his head with the pole of the flag. Enraged by her actions, Captain Finnish pulled out his revolver and fired at Bhogeshwari, who fell down to the ground. She succumbed to her injuries and died on September 20, 1942.
Bhogeshwari is a living testament to the love for motherland and exemplifies that age is never a barrier when national duty calls. We salute the legend of Bhogeshwari Fukanani.
We also remember another Assamese freedom fighter and one of the youngest martyrs of the Quit India movement, Kanaklata Barua, who was martyred on this day in 1942 at the mere age of 17 years. Kanaklata, also referred to as Birbala, was a member of the band of revolutionaries Mrityu Bahini.
Defying the police's orders, she led a group of unarmed villagers to hoist the national flag near a police station in her hometown of Burangabari village in Assam. Kanaklata was shot while hoisting the flag, but even as she fell to bullets, she held the flag high.
The fast patrol vessel ICGS Kanaklata Barua of the Indian Coast Guard, commissioned in 1997, is named after her. A life-size statue of hers was unveiled at Gauripur in 2011. May we continue to be inspired by such courageous souls.
We are also remembering the Irish social reformer and supporter of Indian nationalism, Theosophist Annie Besant, who left us on this day in 1933. Along with Lokmanya Tilak, Besant launched the All India Home Rule League in 1916, which perhaps was the first political movement in India to have regime change as its main goal. She was the first woman to be elected as president of the Indian National Congress in 1917.
As early as 1902, Besant had written that India is not ruled for the prospering of the people, but rather for the profit of her conquerors, and her sons are being treated as a conquered race. She encouraged Indian national consciousness, attacked caste and child marriage, and worked for the Indian education. As editor of the New India newspaper, she called for clear and decisive moves towards self-rule. Until the end of her life, Besant campaigned for India's independence, not only in India, but also on the tours of Britain. We salute her love and zeal for Indian independence.
Yes, and we are also remembering Anup Kumar, born Kalyan Kumar Ganguly, who passed away on this day in 1997. He was an Indian actor and the brother of legendary actors Ashok Kumar and Kishore Kumar. He acted in many Hindi films, including the notable Chalti Ka Naam Gari and Victoria No. 203. He also had a career in film production and playback singing, lending his voice to songs in films like Hum Do Daku. He passed away in Mumbai in 1997 at the age of 71. Let's listen in to a hit song of his.
हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना हन 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 प्यार हो गया हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना हन 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 प्यार हो गया
आज तमिल सिनेमा की अमर नायिका टी आर राजकुमारी की पुण्यतिथि है थंजावुर राधाकृष्ण राजई एक प्रसिद्ध अभिनेत्री संगीतकार और नृत्यांगना थी जिन्हें तमिल सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल कहा जाता है बचपन से ही वे नृत्य गायन और वीणा वादन में निपुण थी फिल्मों में उनका डेब्यू 1941 में कच्चा देवयानी से हुआ वहीं 1944 में हरिदास में एम के त्यागराज भगवतवार के साथ उनकी भूमिका ने रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों में काम किया
Mahesh Bhatt was born on this day in 1948. He is an Indian film director, producer and screenwriter, known for his works in Hindi cinema, known for his unconventional narratives and the exploration of bold themes. He is regarded as one of the most prominent filmmakers in contemporary Indian cinema. He has received a number of accolades, including 5 National Film Award and 4 Filmfare Awards. And a notable film from his earlier period is Saranj in 1984, screened at the 14th Moscow International Film Festival, and it became India's official entry for the Academy Award for the Best Foreign Language Film for that year.
1928 में आर्ट से शुरुआत जहां महेश भट्ट ने अपनी ही जिंदगी के दर्द को स्क्रीन पर उतारा तो आशिकी के प्यार में धमाका और फिल्म दिल है की मानता में पूजा भट्ट का डेब्यू हर फिल्म एक चमत्कार उन्होंने कई फिल्मफेयर अवार्ड्स भी मिले जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर से लेकर बेस्ट एक्टर तक महेश भट्ट हिंदी सिनेमा के एक ऐसे निर्देशक और कहानीकार हैं जिन्होंने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज और जीवन की सच्चाई का आईना बनाया
जॉर्ज रेमंड रिचर्ड मार्टिन बॉर्न जॉर्ज रेमंड मार्टिन वाज बॉर्न ऑन दिस डे इन 1948 आल्सो नोन बाय हिज इनिशियल्स JRRM ही इज एन अमेरिकन ऑथर टेलीविजन राइटर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर And he's best known as the author of the series of epic fantasy novels, A Song of Ice and Fire, which were adapted into the primetime Emmy Award-winning television series Game of Thrones from 2011 to 2019, and its prequel series House of the Dragon from 2022 to the present times. And he has helped create the Wild Cards anthology series and contributed world-building for the video game Elden Ring in 2022.
आज बॉलीवुड अभिनेत्री शकीला की पुण्यतिथि है 1949 में दास्तान से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में डेब्यू किया लेकिन 1954 में गुरुदत्त की फिल्म आर पार में शमी कपूर के साथ उनकी चुलबुले भूमिका ने उन्हें स्टार बना दिया सीआईडी में वहीदा रहमान के साथ चाइना टाउन में शमी कपूर के साथ हिट गाने जैसे बाबू जी धीरे चलना ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई
Yes, and Sophia Loren was born on this day. She's an Italian actress active in her native country and the United States with a career spanning over 70 years. She's one of the last surviving major stars from the golden age of Hollywood cinema. Encouraged to enroll in acting lessons after entering a beauty pageant, Loren began her film career at the age of 16 in 1950, and she appeared in several bit parts and minor roles in the early parts of the decade, until her 5-picture contract with Paramount in 1956 launched her international career. Her film appearances around this time include The Pride and The Passion, Houseboat, and it started in Naples.
हम याद कर रहे हैं भारतीय विज्ञान जगत के एक महान व्यक्तित्व प्रोफेसर अजीत राम वर्मा को उनका जन्म 20 सितंबर 1921 को लखनऊ के निकट दालमऊ में हुआ था। अजीत राम वर्मा ने क्रिस्टल संरचनाओं की स्पाइरल ग्रोथ पर काम किया और विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया।
सो विद दैट वी वाइंड अप दिस एडिशन ऑफ परिक्रमा एंड सो फ्रॉम वैष्णवी एंड मी अभिषेक मुखोपाध्याय टिल द नेक्स्ट टाइम बाय एंड
नमस्कार।